श्रोताओं नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से यशाया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इसका मुख्य विषय है मसीह का आगमन और छुटकारा। प्रिय श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। लीजिए, प्रस्तुत है ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से यशाया नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और अब तक हमने यशाया की पुस्तक उसके 62 अध्याय का अध्ययन किया है और आज हम अपने अध्ययन में 63 अध्याय से आगे बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे इस जीवन के लिए जिसे आपने हम सबको दिया है और धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जिसे हमें दिया गया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन करें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तो आप हमें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि आपके वचन को हम सीख सकें, समझ सकें और अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से आप हम सबकी रक्षा करें। हमारे श्रोता भाई बहन जो निराश हैं, चिंतित हैं, बीमार हैं या किसी प्रकार के तनाव और दबाव में हैं, पारिवारिक उलझन में हैं, पिताजी आप उन्हें शांति और छुटकारा दें। आज के अध्ययन पर अपनी आशीष प्रदान करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हम देख रहे थे कि प्रभु यीशु ने पहली बार आकर स्वयं ही मनुष्य के उद्धार का मार्ग तैयार किया और अब वह स्वयं ही दंड भी देगा जैसे दाख को रौंदा जाता है। तो आइए आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यशाया की पुस्तक 63 अध्याय उसके 6 पद से लिखा है, हाँ मैंने अपने क्रोध में आकर देश देश के लोगों को लताड़ा और जलजलाहट से मैंने उन्हें मतवाला कर दिया और उनके लहू को भूमि पर बहा दिया। यह पृथ्वी पर मनुष्य के छोटे से दिन का अंतर है। राजा दंड देने के लिए पृथ्वी पर आ रहा है। कुछ लोग कहेंगे यह बड़ा भयानक लगता है, मुझे यह अच्छा नहीं लगता है, और फिर वे शुतुरमुर्ग के समान रेत में मुंह छिपा करके यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय या अन्य शांतिदायक बाइबल संदर्भ को पढ़ते और स्मरण करते हैं। परंतु हमें यह पद पढ़ना ही होगा, प्रभु जब दूसरी बार आएगा तब वह दंड देगा। क्या आप कोई और विधि सोच सकते हैं कि वह आकर अपने राज्य की स्थापना करे? अब मान लीजिए कि प्रभु यीशु दूसरी बार भी वैसा ही आए जैसे वह पहली बार आया था। गलीली पुरुष नासरत का एक व्यक्ति जो गांव-गांव घूमकर मनुष्यों से कहता था कि वह स्वर्ग से आया है, यदि वह समाजवादियों में जाए तो क्या वे उसे ग्रहण करेंगे? वे उसे गोली मार देंगे। आज कोई भी देश और कलीसिया यीशु के हाथ में बागडोर संभालने को तैयार नहीं है। यदि वे तैयार हैं तो उसे अपना राज्य क्यों नहीं दे देते? 2010 वर्ष पूर्व जब वह आया था तब उन्होंने उसका परित्याग किया और तब से करते ही आ रहे हैं। मैं दंड की अपेक्षा अन्य कोई और तरीका नहीं देखता जिसके द्वारा वह अपना राज्य स्थापित करे। मेरे प्रियो, कुछ लोग यह भी कहते हैं, यह पद तो पुराने नियम का है और पुराना नियम का परमेश्वर क्रोधी स्वभाव का था, परंतु नए नियम में परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक मुक्त विचारकों में मान्य नहीं है क्योंकि वह दंड की चर्चा करती है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक नए नियम में है और उसकी भाषा संपूर्ण बाइबल में सबसे अधिक कठोर है। केवल प्रभु यीशु के वचनों को छोड़कर जो उसने सबसे अधिक नरक की चर्चा करने में कहे थे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अधार्मिकता, विद्रोह और अभक्ति के दमन के लिए प्रभु यीशु के फिर से आने की चर्चा करती है। मेरे मित्रों, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के इस एक अंश पर ध्यान दीजिए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16 अध्याय उसके 1-5 पद में लिखा है, फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन सातों सर्वदूतों से यह कहते हुए सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के सातों कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। तीसरे स्वर्गदूत ने नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते हुए सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने ही यह न्याय किया है। आलोचक तुरंत कहेगा कि परमेश्वर अन्यायी है, वह ऐसा करने में धार्मिकता का प्रदर्शन नहीं करता है। परमेश्वर हम पर प्रकट करता है कि जब वह ऐसा न्याय करता है तब वह निश्चय ही धार्मिकता का प्रदर्शन करता है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16 अध्याय उसके 6-7 पद में लिखा है, उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया क्योंकि वे इसी के योग्य हैं। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना, हाँ हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरा निर्णय ठीक और सच्चे हैं। परमेश्वर जो भी करता है उचित ही करता है, चाहे हम उसे सही सोचे या गलत। यदि आप और मैं इस विशाल ब्रह्मांड में से अपनी तुलना करें तो स्पष्ट होगा कि हम कुछ भी नहीं हैं। आपकी और मेरी राय एक साथ में भी कुछ नहीं है। परमेश्वर जो कहता है वह महत्वपूर्ण है। परमेश्वर कहता है कि वह धर्मी है और सोचते हैं कि वह नहीं है। इसका अर्थ है कि हम गलत हैं। परमेश्वर का हर एक काम धार्मिकता का है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16 अध्याय उसके 8-9 पद में लिखा हुआ है, चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इस विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराया। आप सोच रहे होंगे कि इस कारण वे परमेश्वर के निकट आएंगे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके विपरीत उनकी वास्तविकता प्रकट हुई, जैसे फिरौन के युग में मिस्र पर विपत्तियों का आना हुआ था। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16 अध्याय उसके 10 पद में, पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपने अपने जीभ चबाने लगे। मैं यह संदर्भ इसलिए दे रहा हूं कि पुराने नियम और नए नियम में एकता प्रकट करूं। अतः किसी की बात ना माने कि पुराने नियम का परमेश्वर क्रोधी स्वभाव का है और नए नियम का परमेश्वर प्रेमी है। यह प्रेमी परमेश्वर ही है जो नए और पुराने नियमों में यह कह रहा है, क्योंकि व्यवस्था में प्रेम है और सच तो यह है कि प्रेम में व्यवस्था है। मेरे मित्रों, दंड भयानक अवश्य है, परंतु वह इस पृथ्वी पर फिर आएगा तो दंड देगा और उसने मुझे इसलिए क्षमा प्रार्थी नहीं ठहराया है। हम देखते हैं कि क्रोध में भी उद्धारकर्ता दया दिखाता है। इस अंश में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपनों को दया दिखाता है। यशाया की पुस्तक 63 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया अर्थात इसराइल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन और उसका गुणानुवाद करूंगा। इस समय संपूर्ण विषय और आशय अकस्मात ही बदल जाते हैं, या ऐसा है जैसे अंधकार से निकलकर दिन के प्रकाश में आ जाना, काले से सफेद हो जाना। हमारा परमेश्वर पवित्रता में महिमामय है, स्तुति में भय के योग्य है, वह चमत्कार दिखाता है। यह तो उसके अनेक गुणों में से एक है। जी हाँ, वह भला है और प्रेम से पूर्ण दया दिखाता है। वह दयालु परमेश्वर है। यदि उसके ये गुण प्रकट ना हो तो हम सब आज भस्म हो जाएंगे। आप इस बात को निश्चित जाने कि उसे इस पृथ्वी पर राज करने के लिए दंड तो देना ही होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने मनुष्य को उसके पास आने के लिए लंबा समय दिया है, एक छूट दी है, ताकि मनुष्य अपने मन को फिराए, पापों को छोड़े। यशाया के पुस्तक 63 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, क्योंकि उसने कहा, निसंदेह ये मेरी प्रजा के लोग हैं, ऐसे लड़के हैं जो धोखा न देंगे, और वह उनका उद्धारकर्ता हो गया। मेरी प्रजा से अभिप्राय है सब विश्वासी इसराइली और महाक्लेश में प्रभु यीशु को ग्रहण करने वाले अनेक अन्य जाति लोग। इस समय कलीसिया तो प्रभु के पास स्वर्ग में होगी। ऐसे लड़के जो धोखा ना देंगे, इससे ऐसा लगता है कि उसे उनसे बड़ी आशा है, परंतु वह निराश हुआ। निसंदेह वह आपसे और मुझसे चाहता है कि हम उसे प्रसन्न करने वाला जीवन जिएं। वह हमें स्पष्ट निर्देश देता है कि हम सब दूसरे से झूठ ना बोलें, पवित्रता का जीवन जिएं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। यशाया 63 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया, और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया, उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। ये वचन कैसे कोमल शब्द हैं। मेरे विचार में यह दूत देह धारण से पूर्व का प्रभु यीशु ही है। लिखा है कि प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया, उसने उन्हें उठाया, वह अपनी प्रजा के कष्टों में उनके साथ रहा। मेरे प्रियो, उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया। इस पर प्रश्न उठाया जाता है कि यह सकारात्मक है या नकारात्मक। हमारे पास इस अनुवाद के अच्छे मूल लेखों का प्रमाण है, परंतु नकारात्मक का भी अच्छा प्रमाण है। उनके सारे संकटों में उसने कष्ट नहीं उठाया। इन दोनों में कौन सा सही है? दोनों ही सही हैं, परंतु मुझे नकारात्मक अधिक उचित लगता है। मैं इसके कारण को भी देता हूं। जब परमेश्वर इसराइल वंशियों के साथ जंगल यात्रा पर था, तब उनके संकटों से उसे कष्ट नहीं हुआ था। उदाहरण के लिए, जब उन्हें विषैले सर्प काटते थे, तब उसे सर्प नहीं काटते थे। उनके संकट में उसने कष्ट नहीं उठाया था। वह एक माता या पिता के समान था जो खड़ा होकर उनकी प्रतीक्षा करता था। वह उसके बिना आगे नहीं बढ़ता था। वह आग का खंभा और बादल था। परमेश्वर उनकी प्रतीक्षा करता था। वह उनके 40 वर्ष जंगल के अनुभव में एक माँ के समान उनके साथ धीरजवंत था। मेरे मित्रों, मेरी कलीसिया जहाँ पर मैं जाता हूँ, इसका कार्यालय सड़क के निकट था जो बाजार में जाती थी। वहाँ एक स्त्री को देखता था जो एक बच्चे को गोद में उठाती थी, और दूसरा बच्चा उसके साथ साथ चलता था। वह कभी कभी रुक जाता था कि कुछ और करे जो उसे नहीं करना था, या गिर जाता था तो उसकी माता रुककर उसके आने की प्रतीक्षा करती थी। वह धीरज धरकर उसके लिए रुकी रहती थी। मैं सोचने लगता कि परमेश्वर अब तक इतने वर्षों से यही तो मेरे साथ करता आ रहा है। मैं गिर पड़ता हूँ या परेशानी में पड़ जाता हूँ तो परमेश्वर मेरे लिए रुक जाता है। वह अपने लोगों के साथ ऐसा ही करता है। यशाया 63 उसके 10 पद में लिखा है, तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया, इस कारण वह पलट कर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। मेरे विचार में पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे थक तो जाता है, परंतु वह हमारे साथ धीरजवंत बना रहता है। इसके लिए परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना है। यशाया 63 के 11 पद में लिखा है, तब उसके लोगों को उनके प्राचीन काल अर्थात मूसा के दिन स्मरण आए। वे कहने लगे कि जो अपनी भेड़ों को उनके चरवाहे समेत समुद्र में से निकाल लाया वह कहाँ है, जिसने उनके बीच अपना पवित्र आत्मा डाला वह कहाँ है। मेरे विचार में यह इसराइल के संबंध में है, परंतु साथ ही यह संपूर्ण मानव जाति का भी चित्रण है। कुछ टीकाकारों के विचार में यहाँ पवित्र आत्मा का अर्थ त्रिएक परमेश्वर के तृतीय पुरुष पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि पुराने नियम में पवित्र आत्मा का स्पष्ट विवरण नहीं पाया जाता है। परंतु मेरे विचार में पवित्र आत्मा जिसका यहाँ पर उल्लेख किया गया है वह आज विश्वासियों में अंतर्वासी पवित्र आत्मा ही है, जबकि पुराने नियम में पवित्र आत्मा के कार्यों का स्पष्ट विवरण पुराने नियम में नहीं पाया जाता है। मैं तो यही मानता हूँ कि वह पवित्र आत्मा ही के बारे में कह रहा है। तो मित्रों आइए हम आगे देखेंगे, पवित्र आत्मा ही था। यशाया की पुस्तक 63 अध्याय उसके 12 और 13 पद में लिखा है, जिसने अपने प्रतापी भुजबल को मूसा के दाहिने हाथ के साथ कर दिया, जिसने उनके सामने जल को दो भाग करके अपना सदा का नाम कर लिया, जो उनको गहरे समुद्र में से ले चला, जैसा घोड़े को जंगल में वैसे ही उनको भी ठोकर न लगी, वह कहाँ है। परमेश्वर फिर उनकी मिस्र से मुक्ति की चर्चा को करता है। इसके पश्चात वह उसकी अगुवाई का इतिहास सुनाता है। यहाँ पर भविष्यद्वक्ता और प्रजा परमेश्वर से विनती करते हैं कि वह उनकी घोर आवश्यकता और मनोकामना पर ध्यान दे। मेरे मित्रों हम आगे पढ़ते हैं, यशाया की पुस्तक 63 अध्याय उसके 15 और 16 पद में लिखा है, स्वर्ग से जो तेरा पवित्र और महिमापूर्ण वास स्थान है दृष्टि कर, तेरी जलन और पराक्रम कहाँ रहे, तेरी दया और करुणा मुझ पर से हट गई है। निश्चय तू हमारा पिता है, यद्यपि अब्राहम हमें नहीं पहचानता और इसराइल हमें ग्रहण नहीं करता, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता और हमारा छुड़ाने वाला है, प्राचीन काल से यही तेरा नाम है। मेरे मित्रों परमेश्वर इसराइल की प्रजा का पिता था, परंतु व्यक्तिगत इसराइलियों का पिता होने का बाइबल में उल्लेख नहीं है, परंतु नए नियम में यह व्यक्तिगत हो जाता है। जिस प्रकार अब्राहम सब इसराइलियों का पिता था, एक का नहीं, उसी प्रकार परमेश्वर भी उन सब का पिता था। यदि आज हम प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो हम भी परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, वह मेरा और आपका पिता बन जाता है। यशाया के पुस्तक 63 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, हे यहोवा तू क्यों हमको अपने मार्गों से भटका देता और हमारे मन ऐसे कठोर करता है कि हम तेरा भय नहीं मानते, अपने दास अपने निज भाग के गोत्रों के निमित्त लौट आ। यह एक याचना है कि परमेश्वर उनके पक्ष में हस्तक्षेप करे। यशाया की पुस्तक 63 अध्याय उसके 18 और 19 में हम आगे पढ़ते हैं, तेरी पवित्र प्रजा तो थोड़े ही समय तक तेरे पवित्र स्थान की अधिकारी रही, हमारे द्रोहियों ने उसे लताड़ दिया है, हम लोग तो ऐसे हो गए हैं मानो तूने हम पर कभी प्रभुता नहीं की और उनके समान जो कभी तेरे न कहलाए। मेरे प्रियो अब ये पूर्ण रूपेण परमेश्वर को समर्पण करते हैं। आज एक विश्वासी का भी यही स्वभाव होना चाहिए, पूरी तरह परमेश्वर के अधीन हो जाए। हम में से अधिकांश जन परमेश्वर के अधीन होने से डरते हैं, कि वह हमारे साथ कठोरता का व्यवहार न करे। यदि हम परमेश्वर को करने दें, उसका काम उसे करने दें, तो वह हमारे साथ कोमलता का व्यवहार करना चाहता है। परंतु स्मरण रखें कि वह दंड देने वाला परमेश्वर भी है, वह न्यायी है, वह किसी का पक्षपात नहीं करता। वही एक दिन आएगा कि अपने प्रकोप की तीव्रता से दाख को रौंदे। परमेश्वर आपको डराना नहीं चाहता, वह आपको सच बताना चाहता है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चे को बार बार गलती करने पर माफ तो करता है परंतु चेतावनी भी देता है, परंतु एक समय ऐसा आता है कि जब पिता उसे दंड भी देता है, और यही परिस्थिति आपकी और मेरी भी है। परमेश्वर ने हम पर अपना अनुग्रह प्रदान किया है, परंतु हम इसे गलत रीति से ना ले, क्योंकि एक समय आएगा जब वह मेरा और आपका न्याय करेगा, और यही सच वह मुझे और आपको इस वचन के द्वारा बताना चाहता है। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 63 समाप्त होता है, और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए अध्याय 64 से देखेंगे, और आज हम सिर्फ इसके परिचय को देखेंगे। इस अध्याय का विषय है जगत पर परमेश्वर के नियंत्रण का स्वीकारण, जगत में मनुष्य की दशा का अंगीकार। मेरे मित्रों, यह अध्याय भी भूखे दिलों द्वारा जीवन के विषयों में परमेश्वर की उपस्थिति की याचना है। आज परमेश्वर की कोई भी संतान ऐसी उत्साही याचना के प्रति कठोर नहीं हो सकता है। एक विश्वासी की पुकार आवेगपूर्ण हो सकती है, जैसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 22 अध्याय के 20 में है, हे प्रभु यीशु आ। यह भी परमेश्वर के वचन का परिव्यक्त भाग है। हमने इस भाग पर अधिक बल दिया है कि आप देख पाए कि हम क्यों सहस्त्र वर्षीय राज्य से पूर्व का विचार रखते हैं, और हम मानते हैं कि प्रभु यीशु कलीसिया को ले जाने के लिए महाक्लेश के समय से पहले आएगा, फिर वह महाक्लेश के बाद आकर अपना राज्य स्थापित करेगा। यह एक अनुमान नहीं है, यशाया की पुस्तक में इसका स्पष्ट उल्लेख है। हमने इस पुस्तक का एक एक पद पढ़ा है, और यशाया एक निश्चित कार्यक्रम को प्रस्तुत करता है। परमेश्वर का वचन व्याख्या के लिए किसी प्रकार के किसी विचार के पक्ष में यहाँ वहाँ के पद नहीं सुझाता है, परंतु आपकी और मेरी कल्पना को इसमें सही उतारना है। आजकल की कुछ कल्पनाएं मुझे एक घटना स्मरण करवाती है। एक स्त्री जूते खरीदने के लिए दुकान में गई। दुकानदार ने पूछा, आपके जूते का नाप क्या है? उसने कहा कि वह 4 नंबर पहन सकती है, परंतु 5 नंबर इतना सुलभ है कि वह सदा ही 5 नंबर ही खरीदती है। मेरे मित्रों, यहाँ पर कहने का विषय यही है कि इसी प्रकार परमेश्वर के वचन की भी आवश्यकता है कि हम विचारों में परिवर्तन लाएं, अपने विचारों को ठीक करें, और इसीलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे अपने दासों के द्वारा निरंतर बातचीत करता रहता है, ताकि हम अपने विचारों में परिवर्तन लाएं, अपने मनों को फिराएं, और उस सत्यता को स्मरण करें कि एक दिन परमेश्वर आने वाला है और हम सारे मनुष्यों का न्याय करेगा। आप माने या ना माने, परमेश्वर का वचन सत्य है और ऐसा होगा। क्या आज आप इसके लिए तैयार हैं? यदि नहीं, तो आज हमारे पास में अवसर है कि हम प्रभु के पास आ जाएं, अपने पापों के लिए क्षमा मांगे और कहें कि प्रभु, हमने गलतियां की है, मुझसे गलती हुई है, आप मुझे माफ करें, इस जीवन से मुझे छुटकारा दें, ताकि मैं आपके अनुसार अपना जीवन जी सकूं। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 1100019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओं, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
बेटे तू सुन, मेरे बेटे तू सुन, मुझसे दूर क्यों रहता है। ए बेटे तू सुन, मेरे बेटे तू सुन, मुझसे दूर क्यों रहता है। तेरे लिए मैंने जान दी, लहू मुझसे दूर जाते हो क्यों, क्यों पास आते नहीं, मुझसे दूर जाते हो क्यों, क्यों पास